हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 32 एंड 33। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद सातवां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 32 एंड 33। कृपया इन अत्यंत ही परम पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं,
प्रजोपत्र वमालक्ष्य लोक
व्यतिकरं सतं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् प्रजोपत्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं सतम् मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् प्रजोपत्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं सतम् मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् प्रजोपत्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं सतम् मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम् शब्दों का अर्थ प्रजोपद उपद्रव अर्थात प्रजा जो सामान्य लोग होते हैं, उपद्रव यानी कि अव्यवस्था आलक्ष्य देखकर लोक व्यतिकरम चता, लोक यानी लोक का व्यतिकरम यानी विनाश यानी भी तम उसको मतम च वासुदेवस्य मतम तथा मत को वासुदेवस्य अर्थात वसुदेव या भगवान श्री कृष्ण का संजहारा अर्थात शमन किया निवारण किया अर्जुन अर्जुन ने द्वयम दोनों अस्त्रों का अनुवाद इस प्रकार जनता में फैली गड़बड़ी को एवं लोकों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह मत कि आधुनिक परमाणु बम के विस्फोटन संसार का संहार कर सकते हैं मूर्खतापूर्ण कल्पना है। पहले तो परमाणु शक्ति संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। दूसरे यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगड़ा नहीं जा सकता। यह भी सोचना मूर्खता है कि अंततः प्राकृतिक नियम शक्तिशाली हैं। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। उसे भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनकी अधिक्षता में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है। छोटे मोटे राजनीतिज्ञों की सनकों से नहीं। कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोण तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं जो और वे जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई कर सकता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं प्रजोपत्रम् अवामालक्ष्यम् यानी कि जब दोनों अस्त्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र दोनों जब टकराए तो इतनी भयानक प्रलय जैसी अग्नि उत्पन्न हो रही थी जिससे तीनों लोकों के प्राणी व्याकुल हो गए थे। और जब भगवान ने देखा कि ये तीनों लोकों के प्राणी कितना व्याकुल हो गए हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनको इस कष्ट से बचाने के लिए, मतम च वासुदेवस्य संजहारा अर्जुनो भयम्। तो अर्जुन क्योंकि भगवान के मुख्य पार्षद हैं, दूत हैं, भगवान के जो इच्छा अनुसार कार्य करते हैं वो जानते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो जैसे भगवान का इशारा हुआ तो भगवान, मतम च वासुदेवस्य, भगवान की इच्छा अनुसार अर्जुन ने उन दोनों को, दोनों ब्रह्मास्त्रों को लोटा दिया। संजहारा अर्जुनो, संजहारा मतलब निवारण कर दिया अर्जुन ने द्वयम यानी दोनों को, दोनों अस्त्रों को अर्जुन ने शमन कर दिया, समाप्त कर दिया या भुला लिया अपने पास, उनका जो तेज था वो खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रजोपद्रवमलक्ष्य, क्योंकि ये वास्तव में अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसके पास थी, अभी क्षत्रिय हैं अर्जुन, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स की रक्षा करें। तो भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं कि अर्जुन देखो, क्योंकि सब लोग इसके कारण बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हैं, तो आपका कर्तव्य है कि समस्त जितने भी लोग हैं उनको, उनके इस दुख का शमन करो। तो ये गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है कि सारे सिटीजन्स की रक्षा करें। इसी तरह से आज भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके गवर्नमेंट्स जो है अपने सारे सिटीजन्स की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है, उनको जो जो चीज़ों की, वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें प्रोवाइड करती है। लेकिन वैदिक संस्कृति में एक और भी महत्व बात यह है कि उसमें जीवों के जितने भी सिटीजन्स होते हैं या जितने भी रिया या प्रजा होती थी, उनके वास्तविक लक्ष्य और वास्तविक ना उनके कल्याण के विषय में सोचा जाता था कि चलो ठीक है, इस संसार में तो उसे भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में वो आए क्यों हैं उसका भी ख्याल रखा जाता था कि ये जो जीव हैं वो किस तरह से अपने वास्तविक लक्ष्य को पहुंचे। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति में चार वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ताकि जो जो जीव, जो जो व्यक्ति जिस जिस स्टेज पर है वहां से उसको उठाया जाए और उसको कहाँ तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कार्य करना है। अब इस संसार में जब आए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, जो भी जीव संसार में आया है उसे कार्य करना है। तो कार्य किस तरह करना है, क्योंकि कार्य यदि वो करेगा तो वो फंसेगा ना, कर्म का कोई ना कोई बंधन लगेगा। तो भगवान वो किस तरह से बताते हैं, भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि हर जीव जो जिस स्टेज पर भी है उसे कैसे कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यदि ब्राह्मण है तो उसे ब्राह्मण का कार्य करना है, लेकिन किस लिए, भगवान की प्रशंसा के लिए। क्षत्रिय है, अर्जुन को युद्ध करना है, लेकिन साफ साफ लिखा मदम च वासुदेवस्य, जैसा भगवान ने कहा उनके अनुसार वो अपना कार्य कर रहा है तो कभी भी वो बंधन में नहीं फंसेगा। उसी तरह वैश्य शूद्र जो भी कार्य करें, यदि वो यज्ञार्थ समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि वो कार्य करते हैं तभी वो कर्म बंधन से छूट सकते हैं, अन्यथा लोकोयम कर्म बंधन, आप कोई भी कार्य करते हो अवश्य कर्म का बंधन लगेगा। तो आजकल इस बात को बिल्कुल भी देखा नहीं जाता कि जीव कार्य कर रहा है केवल इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग ही जीव का लक्ष्य हो गया है। कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो जीव को कर्मों के बंधन से छुड़ाने की बात करती हो, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बता रहा है भागवत, हमें ये शिक्षा दे रहा है कि यदि मतम च वासुदेवस्य, आप कोई भी कार्य करते हो यदि वासुदेव की इच्छा के अनुसार कार्य करते हो तभी आप इन समस्त कर्मों के बंधन से छूट सकते हो। क्योंकि शिवरूपा जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संसार का विनाश कर सके या इस संसार का स्टार्ट कर सके, क्योंकि वो सब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में साफ साफ बताते हैं 9.9 में, मया ध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। ये प्रकृति मेरी मेरे इशारों पर चलती है, ये मेरी शक्ति है। अब जाहिर सी बात है जिसकी शक्ति होगी उसी के अनुसार कार्य करेगी। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मूर्ख लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम एटम बम बनाएंगे तो जो तो ये संसार है उसका विनाश करेंगे, विस्फोट करेंगे, संपूर्ण वस्तुओं का विनाश कर देंगे। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि आप तब तक चल सकते हो जब तक आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करता है। एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलता है, उसकी इच्छा के अनुसार एक पत्ता भी वृक्ष से निकलकर कहीं और नहीं जा सकता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति का सारा नियम जो है वो भगवान के आदेशों से काम कर रहा है और भगवान की इच्छा के अनुसार ही उसे भगवान की अध्यक्षता में कार्य करना है। इस संसार का संहार भगवान की इच्छा से हो सकता है। छोटे छोटे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनकी इच्छा से संसार का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। और जैसा भगवान यदि किसी मारे कृष्ण राखे कौन और राखे कृष्ण मारे कौन, तो जीव को हर जीव उसको ये बात सोचनी चाहिए कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही मेरा कल्याण होगा और मुझे वही कार्य करना है जिससे मैं भगवान को प्रसन्न करूं। यदि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा हूं तो भले ही मैं कितनी भी मेहनत करूंगा संसार में सुखी नहीं हो सकूंगा। तो फिर हमारा वास्तविक लक्ष्य है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, ना कि भौतिक जितने भी आजकल लोग सिर्फ इस संसार में ही भौतिक जो बड़ी पोस्ट पर लोग होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं और पूरा जीवन इसी में लगा देते, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं सोचते। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो कुछ दिया है कृष्ण ने दिया है और जो कुछ देंगे वो भी कृष्ण ही देंगे, तो क्यों हम कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को किसी और को सरेंडर करते। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये कहा मतम च वासुदेवस्य, जो भगवान की इच्छा होगी उसी के अनुसार यदि जीव चलेगा तो ही उसका कल्याण होगा। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे ही भगवान की कृष्ण के हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि अब इन दोनों अस्त्रों का शमन होना चाहिए, तो अर्जुन ने भगवान की इच्छा से तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। और इसी प्रकार सर्वशक्ति भगवान के अनेक दूत हैं संसार में, हर जगह पर फैले हुए हैं भगवान की शक्तियां। तो जो भी भगवान इच्छा करते हैं, जो भगवान चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही वो करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। आगे श्लोक नंबर 33 कृपया रिसाइट कीजिए। तत आसाध्य तरसा दारुणं गातमीसुतं भगन्धामाश भगन्धामर्शतां राक्ष पशुं रशनया यथा। तत आसाध्य तरसा दारुणं गातमीसुतं भगन्धा मर्षताम् राक्ष पशुं रशनया यथा। तत आसाध्य तरसा दारुणं गातमीसुतं भगन्धा मर्षताम् राक्ष पशुं रशनया यथा। तत आसाध्य तरसा दारुणं गातमीसुतं भगन्धामर्षतां राक्ष पशुं रशनया यथा। शब्दों का अर्थ तत तत्पश्चात आसाध्य बंदी करके तरसा कौशल से दारुणम घातक गौतमी सुतम गौतमी पुत्र को बबंध बांध लिया, अमर्ष क्रुद्ध ताम्रक्ष लाल लाल आँखों से पशु को रशनया यानी कि रस्सियों से यथा जिस प्रकार। अनुवाद तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत ही कौशल से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय हो। शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सियों से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के अनुसार अर्जुन को अपना धर्म निभाने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वेद पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बताया तात्पर्य में, जैसा कि कहा सुत गोस्वामी कहते हैं तथा असाध्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम, कि क्योंकि ये जो गौतम, हालांकि यहाँ पर कहीं पर भी अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा करके नहीं बताया जा रहा है बार बार कि ये किस वंश से आया, क्योंकि जो कृपाचार्य की बहन कृपि जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था वो गौतम ऋषि के कुल से थी, लेकिन उनके गौतमी सुतम से पहले लिखा गया धारुणम, अर्थात ये जो भले ही कितने ही महान कुल का एक कुल की संतान था ये अश्वत्थामा, परंतु फिर भी धारुणम था, घातक था, आतताई था, तो ये भले ही ब्राह्मण था परंतु इसके साथ ब्राह्मण जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ जाहिर होता है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो कुल से नहीं होते, जैसे कि आजकल बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे बोलते कि हम तो कुल से ब्राह्मण है, हमारा कुल ब्राह्मण है, परंतु देखना ये होता है कि क्या तुम्हारे कार्य भी ब्राह्मण जैसे हैं या कार्य पशुओं जैसे कर रहे हैं। जैसे कि पशु का क्या कार्य होता है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो वही कार्य यदि आज का ब्राह्मण भी कर रहा है तो फिर वो उसके साथ ब्राह्मण जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसको केवल ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाना ही काफी नहीं है कि वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो बस अभी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जी नहीं, यहाँ पर साफ श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, क्योंकि हालांकि ब्राह्मण जो है उसका वध नहीं करना चाहिए था, उसको पशुओं की तरह रस्सी से बांधा नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके कार्य कैसे थे, जानवर के जैसे, अतः उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। तो हमें भी ये देखना चाहिए, हमारे पास बुद्धि है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, शास्त्र दिए हैं, गुरु दिया, मार्गदर्शन दिया है, तो हमें देखना चाहिए कि हम किस से शिक्षा ले रहे हैं, किस ब्राह्मण के साथ पूजा करवा रहे हैं, क्या वो वाकई में ब्राह्मण जैसे कार्य कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसको ब्राह्मण के ना केवल ब्राह्मण के कुल में पैदा हो जाना उसके लिए काफी नहीं है। और रस्सियों से बांधते हुए भी यहाँ पर साफ साफ सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में कोई ना उसके लिए स्नेह नहीं था। यहाँ पर साफ साफ बताया भवन धाम अर्षताम रक्ष, उसकी जो आंखें थी वो एकदम वो गोले की तरह, तांबे के दो लाल लाल गोलों की तरह क्रोधित प्रज्वलित आंखें दिख रही थी उसकी, क्योंकि उसने बहुत ही घिनौना कार्य किया था, 5 बच्चों की हत्या की थी, सोते में उसको मार दिया था, और इसके कारण क्योंकि क्षत्रिय था अर्जुन और उसके पुत्रों की हत्या हुई थी, वो बहुत ज्यादा दुखी था, प्लस बहुत ज्यादा गुस्सा उसको इसलिए आ रहा था कि वो गौतमी सुत है, मेरे गुरु का पुत्र है, और इसने इतना बड़ा अपराध किया है, तो अपराधी को दंड देने के लिए अभी तो उसको मार डालना चाहिए था, क्योंकि आतताई को जो सोते हुए किसी को मार डालता है, उसकी किसी की हत्या कर देता है, उसको तो जान से मार डालना चाहिए, परंतु फिर भी अर्जुन अभी तक ये नहीं बोला कि ये तो हमारे गुरु महाराज का पुत्र है। और इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी अर्जुन की हृदय की बात लिख रहे हैं, गौतमी सुत, कि उसे याद है कि ये इसके भले ही इसके अपराध जो हैं वो बहुत घिनौने हैं, परंतु ये एक बहुत ही उच्च कुल का व्यक्ति है, तो उसके साथ मैं इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकता हूँ जब तक कि अभी मुझे दूसरी आज्ञा भगवान देंगे, उसके अनुसार ही मैं बात तो मैं कार्य करूंगा। फिलहाल तो उनको पशु रशनया यथा, पशु की तरह उसे रस्सियों से बांध लिया। वास्तव में भक्तों यहाँ पर हमें ये बात समझने की है कि जिस प्रकार दोनों ब्रह्मास्त्रों के चलने से पूरी जगह पर इतना संकट छा गया था, हर जगह पर धधकती हुई अग्नि जो है वो भड़कने लगी थी और सब विचलित हो गए थे, तो यही अवस्था हमारी है। ये जो कलयुग है ना, कलयुग इज वेरी 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 डेंजरस युग। बहुत बहुत संकट है यहाँ पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज के इस युग में कोई भी मनुष्य आसानी से अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सक रहा है, कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। हर किसी के जीवन में, हर किसी के घर में, सोसाइटी में, देश में, विदेशों में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और हर कोई व्यक्ति अपने अपने मतानुसार वो ये क्या चाहता है कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। हर कोई जीव अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी उसके घर की हैं, सोसाइटी की हैं, देश की हैं, या वो कितने लेवल का है, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया गया है उन प्रॉब्लम्स के को खत्म करने के लिए, और साफ साफ बताया जा रहा है, हमें ये जानना चाहिए कि यदि हम इन भौतिक कष्टों का निवारण करना चाहते हैं तो हम इन कष्टों को अपने मत के द्वारा सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ सूत गोस्वामी कहते हैं, मतम च वासुदेवस्य, यदि हम अपने कार्य को, अपने कोई भी कार्य को मतम च वासुदेवस्य नहीं करेंगे, यदि भगवान की इच्छा अनुसार नहीं करेंगे, तो अवश्य माया दबोच कर हमसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाएगी। और जैसे ही हम माया की इच्छा के अनुसार कार्य शुरू कर देंगे, फिर क्या हम क्या सोचते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते। जीव सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं, परंतु वास्तव में कोई भी कार्य, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, कोई भी कार्य जीव तब तक नहीं कर सकता जब तक कि भगवान की सहायता प्राप्त नहीं होती उसे। लेकिन फिर भी यदि हम भगवान की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान ने हमें पूरा का पूरा फ्री विल दिया है, ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे केवल वही कार्य करवाएंगे जो भगवान की इच्छा है। भगवान ने आपको स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन उसके बावजूद, स्वतंत्रता के बावजूद भी भगवान की सहायता के हम मोहताज हैं। जैसे भगवान ही नहीं चाहेंगे तब तक नहीं कार्य कर सकेंगे। तो जो भगवान को विनाश करना है या भगवान को जो प्रलय करना है, वो भगवान अवश्य, कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं, कभी किसी को बोला था मैंने कि आप लोग है ना मछली नहीं खाया करो, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए क्योंकि भगवान को अर्पण नहीं होता है, भोग नहीं लगता, कुछ इस तरह से बात हुई। तो कहा कि यदि हम मछली नहीं खाएंगे तो पूरा समुद्र मछलियों से भर जाएगा, मछलियां तो खत्म ही नहीं होंगी, पूरा का पूरा समुद्र मछलियों से भर जाएगा, फिर स्विमिंग के लिए भी जगह नहीं बचेगी, मतलब पूरा का पूरा समुद्र मछलियों से भर जाएगा, और फिर पानी बचेगा नहीं, खाली मछलियां ही मछलियां बचेंगी। तो ये सब केवल बहाना बाजी है। हमें भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जानते हैं कि मुझे कितना, भगवान को पता है कैसे मुझे सृष्टि करनी है, कैसे प्रलय करना है। तो हमें भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पता है कि मुझे किस तरह से क्या कार्य करना है। हमें तो केवल क्या करना है, मतम च वासुदेवस्य, जैसे भगवान की इच्छा है उसके अनुसार कार्य करना है। और वो भगवान की इच्छा में कैसे पता है चलेगी, तो शास्त्र कहता है तस्मात शास्त्र विधानस्त, जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही विधान है। हमें जो हमें क्या करना है, जो कि हमें शास्त्र कमांड करता है वही हमें कार्य करना है। और अगर हम शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह शास्त्र मुदि विसृज्य वर्तते काम कारणात् न त सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। यदि हम शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, यदि जैसे शास्त्र में आज्ञा की गई है तो फिर हम उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, न च सिद्धिम न परम गतिम, हमें कभी भी ना सिद्धि मिलेगी ना परम गति मिलेगी ना सुख मिलेगा। क्योंकि ये तो शास्त्र में लिख दिया भगवान ने कि यदि आपको खुश होना है, यदि आपको ये जो संसार के कलयुग के जितने भी अभद्र हैं, क्या प्राणे प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्य हो प्रद्रता, कि एक तो सबसे पहले जीव की आयु इतनी कम है और उसके बाद आयु प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा। मंदा का मतलब होता है कि एक तो बहुत सुस्त हैं और मंदा का मतलब होता है बुरे हैं। वो विचार प्रायः हमारे बुरे ही होते हैं। अगर हम अपनी इच्छा से कोई कार्य करेंगे ना, कलयुग का कोई भी प्राणी अगर उसको छोड़ दो ना कि अपनी इच्छा करो, तुम यदि उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया जाए ना तो वो अपराधी करेगा। तो इसको कहा मंदासु मंद मत है, उसकी बुद्धि इतनी कम है, बहुत ही मतलब तीव्र बुद्धि नहीं है, इतना अच्छा वो सोच नहीं सकता है, इसलिए मंद भाग्य, उसका भाग्य भी इतना ही खराब है और हमेशा बेचैन रहता है। इसलिए वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य यदि करेगा तो वो अवश्य ही गलत करेगा। और फिर जब वो गलत अपराध करेगा, जैसे अभी अश्वत्थामा ने भी, किसी ने उसको कहा नहीं कि अभी युद्ध खत्म हो गया है तो भी तुम जाओ जो सोए हुए हैं उसको मार डालो, किसी ने उसको नहीं कहा, अपनी सोच से उसने किया। करना हम करना अच्छा भी चाहेंगे ना यदि अपनी इच्छा से तो भी बुरा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इंस्ट्रक्शंस लेनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने ली मतम च वासुदेव से। और हमारे लिए वासुदेव से हम कैसे लेंगे, जैसा हमें गुरु साधु और शास्त्र में बताया बताया जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु मीन्स वॉट, गुरु मीन्स हु स्पीक्स ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्रास, अदरवाइज इज नॉट गुरु। अगर वो शास्त्र के अनुसार आपको बात बता रहा है, आप किसी को भी गुरु नहीं बता बना सकते। यदि वो आपको एज शास्त्र की बात बता रहा है तो आप उसको गुरु एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड शास्त्र मीन्स वॉट, शास्त्र मीन्स द ओपिनियन ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज। ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गेरा उठकर कोई शास्त्र लिख लेगा और आप बोलो कि देखो इस शास्त्र में ये लिखा है, नहीं। जो ग्रेट अथॉरिटीज हैं, जैसे नारद हैं, व्यासदेव हैं, महादेव शिव हैं, उन्होंने जो बात कही है शास्त्र में वही आपको माननी है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कह दिया, कोई कोई लोग बोलते भाई हमारे इसने कहा या उसने कहा, ये नहीं बात मानी जाती है। वास्तव में जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो भगवान ने कहा है, क्योंकि ये जो ग्रेट अथॉरिटीज होती हैं, जैसे नारद मुनि डायरेक्ट से वही बात करेंगे जो ब्रह्मा जी से उन्होंने सुनी है, और ब्रह्मा जी वही बात बताएंगे जो कि भगवान से सुनी है, और शिव जी वही बात कहेंगे जो कि कृष्ण से उन्होंने सुनी है। इस तरह से वो जो ग्रेट अथॉरिटीज होते हैं, महान आचार्य होते हैं, वो वही बात बताते हैं जो कि भगवान कह रहे हैं। ये है मतम च वासुदेवस्य, हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमें महान आचार्य। अभी देखो भगवान के और भी ऐसे स्वरूप होते हैं जिनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सेप्ट द फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य एंड बुद्धा। हाँ, क्योंकि बुद्ध जो है, महात्मा गौतम बुद्ध, शून्यवादी, वो क्या कहते हैं, शून्य कुछ भी नहीं है, शून्यवादी। और शंकराचार्य क्या बताते हैं, मायावादी, मायावादी, वो मायावादी। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दे कम्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस बट दैट इज नॉट फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा है टाइम बींग, वो क्या, वो सिर्फ टाइम बींग के लिए, थोड़े एक समय के लिए ही वो आए थे. वो परमानेंट, उनका जो आदेश है वो परमानेंट नहीं है कि आप है ना शून्यवादी बन जाओ, आप मायावादी बन जाओ. परमानेंट सॉल्यूशन क्या है जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या मतम च वासुदेवस्य, दैट इज परमानेंट सॉल्यूशन. और ये क्या है भगवान श्री कृष्ण का आदेश, क्या है वासुदेव का आदेश, क्या है भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में बताया है. इवन शंकराचार्य सेज भगवत गीता किंचिदाधीत, यानी कि अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का छोटा सा श्लोक भी पढ़कर उसके उसको अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हो तो आपका जीवन सफल है. यानी कि अपने जीवन को सफल करने के लिए आपको क्या करना है, भगवान के आदेश का पालन करना है, मतम च वासुदेवस्य. और भगवान का आदेश क्या है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रजा. करोड़ों धर्म है भले संसार में, लेकिन तुम्हें क्या करना है, सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आना है. तो फिर मैं कार्य क्या करूं, नहीं करूं क्या कोई कार्य, तुम्हारी शरण में आ जाओ. नहीं, भगवान कहते हैं ऐसा तो मैंने नहीं कहा है, तुम्हें अपना कार्य करना है. लेकिन 9.27 में बताया भगवान ने किस तरह से कार्य करना, यत करोषि यदश्नासी यज्ञ होषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम. तुम जो कार्य करते हो, जो खाते हो, जो अर्पण करते हो, जो कुछ भी करते हो, वो केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए करो, मेरे लिए करो, मुझे अर्पित कर दो. यदि तुम ऐसा करोगे तो शुभाशुभ परित्यागे मोक्ष से कर्म बंधन, तभी तुम समस्त शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे.